તારીખ 20/9/1997 શ્રી સમયસર ગાથા 186 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 33
શ્રી સમયસર પરમાત્મા સમર્થ પિતા છે 186 ગાથા संवर मैंने आत्मशुद्धि भाव संवर जिसको कहते हैं वो आत्मशुद्धि है। अस्थि से अशुद्धि का अभाव को यानी अशुद्धि के उत्पन्न होने का रुक जाना उसको भी नास्ति से संवर कहते हैं। और इसी कारण से द्रव्य कर्म का आश्रम नहीं होना, बंध नहीं होना, उसको द्रव्य संवर कहते हैं। ये संवर के दो प्रकार है, इसकी परिभाषा तीन प्रकार से है। यहाँ पर एक प्रश्न है, आचार्य टीकाकार आचार्य महाराज ने ये प्रश्न उठाया है कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है, इसका उत्तर कहते हैं। क्या कहा कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है तो अनादि अनंत है
जी।
आत्मा स्वभाव से जैसा स्वरूप है, शुद्ध भी एक कहने की बात है, वास्तव में तो अशुद्धि उसमें हुई नहीं, इसलिए शुद्ध अशुद्धि से तो निरपेक्ष है। शुद्ध अशुद्धि पर्याय धर्म है, द्रव्य का धर्म नहीं होने पर भी पर्याय की मुख्यता से उसको कभी कभी वो धर्म लागू किया जाता है
जी।
सिर्फ व्यवहार से कहने की बात है, आत्मा तो वैसा है, वैसा अनादि अनंत अपने स्वरूप से है। इस स्वरूप की उपलब्धि, उपलब्धि माने प्राप्ति, प्राप्ति माने अनुभव। शुद्धात्मा की प्राप्ति से, शुद्धात्मा के अनुभव से संवर कैसे होता है, ये प्रश्न उठाया
जी।
कैसे संवर होता है? शुद्धात्मा का अनुभव हुआ हमें, हमारा जैसा स्वरूप है वैसा अनुभव हुआ तो उसमें संवर कैसे हुआ, ये प्रश्न उठाया है। इसके उत्तर रूप की गाथा आचार्य महाराज की बता रहे हैं। शुद्धं तु ज्ञानन्तो शुद्धं च एकं लहदि जीवो ज्ञानन्तो तु अशुद्धं अशुद्धं एवं अपयं लहदि अपयं लहदि शुद्धात्मा को जानता हुआ, जानता हुआ माने अनुभव करता हुआ जीव शुद्धात्मा को ही प्राप्त करता है
जी।
और अशुद्धात्मा को जानता हुआ यानी अशुद्धात्मा को अनुभव करता हुआ जीव अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है
जी।
ज्ञानी और अज्ञानी एक गाथा में दोनों की समीक्षा की है। समीक्षा मैंने बराबरी कि ज्ञानी का परिणाम कैसा होता है, सभी संसारी अज्ञानियों का परिणाम कैसा होता है
जी।
ये प्रस्तुत गाथा का विषय है और प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर भी है। शुद्ध आत्मा को जानता हुआ अर्थात अनुभव करता हुआ जो अपना स्वरूप है, जैसा है वैसा उस रूप अनुभव करता है, अपने स्वभाव को स्वभाव रूप अनुभव करता है, तो उसकी दशा में परिणाम में अशुद्धि का नाश होकर के शुद्धि की उत्पत्ति होती है। अत्याग कर जाता है तो अशुद्धि का नाश होकर के शुद्धि की उत्पत्ति होती है। किसको अनुभव करता है उसको, क्योंकि आत्मा अनुभव की चीज है, आत्मा विकल्प विचार की चीज नहीं है। इसलिए हमें कभी समयसार पढ़ के यह गलती नहीं करना चाहिए कि हमने तो शुद्ध आत्मा को जाना है माना है, इसलिए हम तो वही करते रहे कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, हमारी आत्मा शुद्ध है। ये विकल्प वाली जानकारी, विकल्प वाली श्रद्धा या मान्यता वो सही नहीं है। जब तक ऐसा स्वरूप जैसा है वैसा स्वरूप आकार तन्मयाकार दशा नहीं हुए वहां तक ये मानना मानना बात बिल्कुल भ्रांतिगत है और ऐसा मानने से कोई फल आता नहीं है, यानी संवर होता नहीं, शुद्धात्मा की उपलब्धि होती नहीं।
शुरू में बिना विकल्प में काम हो जाएगा, शुरू में विकल्प तो है नहीं।
शुरुआत कहाँ तक करनी है, रखनी है आपने। हम करीब 40 साल से 50 साल से समाचार पढ़ने वाले लोग है कि नहीं, कहाँ तक शुरुआत रहेगी हमारी। आचार्य महाराज ने तो ये कहा कि 6 महीने में अनुभव होता है
जी,
हमको 6 साल मिली नहीं है, 56 साल मिल गई है 6 के जगह। तो ये कहाँ तक हमारी शुरुआत है, ये हमारी शुरुआत नहीं है, उसने ही हमको सर्वस्व सब कुछ बना लिया है। ये शुरुआत के बहाने हमें एक नई गलती पैदा कर दी है, ये तो हमारी शुरुआत है, ये तो हमारी शुरुआत है, शुरुआत नहीं है। सामान्य समझदारी की बात है शुरुआत में कि मूल स्वरूप से आत्मा कैसा है, ये समझदारी अनुभव नहीं है। ऐसा समझदारी नहीं होना चाहिए कि ये समझदारी स्वानुभव नहीं है। स्वानुभव कोई अलग चीज है, ऐसी हमारी समझ है वो कोई अलग चीज है।
पर्याय की स्वतंत्रता का विषय होता है ऐसे, पर्याय अपने स्वीकार में आएगी, अगर हम उसको जल्दी नहीं आए तो पर्याय की स्वतंत्रता का विषय हो
जाएगा। नहीं, ये भी एक नई गलती है। पर्याय की स्वतंत्रता द्रव्य के आश्रय बिना सही रूप से समझी जाती नहीं। पर्याय की स्वतंत्रता किसको समझ में आती है कि जिसको अपनी द्रव्य दृष्टि से स्वानुभव प्रकट हो और वहां अहम रूप से अनुभव होता रहता हो तो पर्याय को स्वतंत्र रूप से देखता रहता है, ये पर्याय की स्वतंत्रता है। लेकिन हम कर्ता बुद्धि में पड़े हैं, पर्याय को परतंत्र कर रखे हैं और विकल्प में या समझ में लेते हैं कि पर्याय स्वतंत्र है, ये भी हमारी एक नई गलती हुई।
उस वस्तु की प्राप्ति के लिए अपना पूरा अपील लगाए और वो वस्तु प्राप्ति न हो तो समय अपने को क्या विचार करना चाहिए।
देखो, गुड़ या शक्कर पानी में डाले और मीठा स्वाद नहीं आए ऐसा बनता है, शायद ऐसा बने तो बनो लेकिन आत्मिक प्रयत्न हो और शुद्धात्मा की उपलब्धि न हो ऐसा कतई बनता नहीं है। सूरज कभी पश्चिम में उग सकता है, बर्फ कभी गर्म हो सकता है, अग्नि ठंडा हो सकता है, लेकिन आत्मा का पुरुषार्थ करने वाले को आत्मा का अनुभव नहीं हो वो कभी बनता नहीं है। ये नितांत भ्रम है कि ऐसा बनता है कोई तो अपने स्वकाल में अनुभव होने वाला होगा तो होगा, एक नया भ्रम है, कभी बनता नहीं है ऐसा। अनंत ज्ञानियों की साक्षी है, अनंत तीर्थंकरों की साक्षी है कि जिसको स्वानुभव के योग्य पुरुषार्थ हो पर उसको स्वानुभव न हो तिंकाल के लोक में बनने वाली चीज नहीं है। कारण दो और कार्य नहीं हो, अगर ऐसा माने तो ये कारण कार्य विपरीतता का विपर्यास है, बड़ा बहुत बड़ा विपर्यास है, ऐसा बनता ही नहीं कभी।
भावना
अरे ब्रह्मांड को बदलना पड़े, भावना का कारण दिया है माता पुरुषार्थ तो भावना के साथ चलता है, लेकिन भावना ऐसी चीज है कि सही भावना आत्मा में से चैतन्य में से उत्पन्न हुई भावना हो, पुरुषार्थ तो इसके पीछे आएगा। ये सफल नहीं हो गए तो 14 ब्रह्मांड को शून्य हो जाना पड़े, जबकि एक परमाणु का नाश होना संभव नहीं है, 14 ब्रह्मांड कहाँ से शून्य होगा, तो ये तो बनता ही नहीं कभी।
इसमें मुख्यता तो भावना की विशेष रही,
भावना की मुख्यता इस मार्ग में बहुत है, प्रारंभ से लेकर के केवल ज्ञान तक भावना की प्रधानता है, भावना प्रधान मार्ग है, भावना में भावना से ही अनुभव है, बिना भावना अनुभव नहीं है।
भावना अगर सच्ची हो गए तो सम्यक पुरुषार्थ हो गए ही हो
गए ही हो गए। अरे कुदरत को पलटना पड़ता है
जी,
तो ब्रह्मांड का शून्य होना मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा कहे कि देखो इस काल में कीर्तन करने हैं, शिव जी नहीं है, क्या करें हम, और लगा और इस काल में क्या करें, मुनियाँ दिखते नहीं, दिखते दिखाई नहीं देते, ज्ञानी भी करोड़ अरबों में कुछ एक होते हैं, क्या करें, और शास्त्र भी बहुत से विच्छेद गए हैं, बहुत पंचम काल हुंडा उसर पे चल रहा है, जैन धर्म के निंदक हो जाते हैं, जैन प्रतिमा के निंदक हो जाते हैं, जैन ग्रंथों के निंदक हो जाते हैं, देखो कैसा काल आया है, क्या करेगा, देखो सब कुछ है। इसके बावजूद भी अगर हमारी भावना है तो कुदरत को पलटना पड़ेगा, कुदरत नौकरानी दासी वो करके काम करेगी, ये हमारी ताकत का विषय है, इसी का नाम है अनंत शक्ति, आत्मा में अनंत शक्ति है। बात वो रही कि हम यथार्थ रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं
जी,
पुरुषार्थ बिना का कोई जीव नहीं, आत्मा का सभी गुण निरंतर परिणमन कर रहा है, तो उसमें एक दिव्य गुण है वो भी निरंतर परिणमन कर रहा है
जी।
इसका दो प्रकार है, एक उल्टा और एक सुल्टा। जब तक ये उल्टा काम करता है जीव संसार में परिक्रमा करता है
जी,
जब से इसकी दिशा पलटती है और पुरुषार्थ स्वरूप सम्मुख होता है, संसार का नाश होकर के सिद्धालय में आत्मा आखिर में विराजमान हो जाता है, तो पुरुषार्थ तो है ही समको। अब वो पुरुषार्थ यथार्थ है या नहीं उतना ही देखना है, उतना ही समझना है और उतना ही कार्य करना है
जी,
उसे कोई बात नहीं है। पुरुषार्थ को जहाँ तक संबंध है वहां तक तो उतने से बात है, तो हम सही रूप से पुरुषार्थ करें, पर हमारा कार्य नहीं हो क्योंकि पर्याय तो आने वाली नहीं थी इसलिए नहीं आई, ये बात स्वच्छंद की है, ये बात समझदारी की है ही नहीं।
पुरुषार्थ जो है वो पुरुषार्थ का खेद क्या, खेद बिंदु क्या, पुरुषार्थ किसके लिए करे, अनादि अनंत वस्तु में हूँ, उसके लिए पुरुषार्थ करना है या अन्य कोई पुरुषार्थ करना है,
पुरुषार्थ में योजना है, पुरुषार्थ की भी ज्ञानियों ने योजना बनाई है। तो गुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा कि अगर तुमको शुरुआत करनी है तो तुम पूर्णता के लक्ष्य से करो, क्या कहा कि तुम पूर्णता के लक्ष्य से करो, माने पूर्णता के ध्येय से करो, नहीं 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 वो गलती यहाँ भी नहीं करना है, पूर्णता मैंने पूर्ण सिद्ध पर्याय, ये प्रश्न पूछा गया गुरुदेव को स्वयं को, क्या आपने ये सूत्र कहा कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत माने त्रिकाली पूर्ण स्वरूप के लक्ष्य से शुरुआत करें हम क्या, गुरुदेव ने ना दिया कि यहाँ ये पूर्णता की बात नहीं है, यहाँ तो पूर्ण पना मैंने पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष की बात है, क्योंकि मोक्ष को शुरुआत करनी है, ज्ञानी की बात नहीं है, चतुर्थ गुण स्थान वाले की बात नहीं है, पहले गुण स्थान वाले की बात है, तो उनको ध्येय पूर्णता का हुए बिना अपना शुद्ध स्वरूप की खोज कभी होने वाली नहीं है, पर खोजी जिएगा, खोजी जिएगा वादी मरेगा। एक बड़ा सीधा
सा ऐसी बात होना है, अब में क्या बात है, सब
होना है वो बात नहीं है।
क्रिया के पूर्णता के लक्ष्य में मुझे पूर्ण होना है, ये बात अगर सही है तो सही बात है। तो क्रिया के धर्म रहा उसने क्षेत्र का गुण कथन किया है। स्वर
देखो द्रव तो अपने स्थान में है, है,
है, नहीं है तो सब
वो अनजाने हाँ है जो शुरुआत
कर रहे हैं। पूर्ण है,
है?
जैसा है अपने में पूर्ण है क्या? पूर्ण है
तो पूर्ण है,
तो
द्रव पूर्ण है, लेकिन हम पहचानते नहीं है, हम पहचानते नहीं है। हम जो द्रव पूर्ण है वो कहते हैं वो हमारी कल्पना है, कल्पना है वो गलत बात है।
कल्पना नहीं है, वस्तु स्थिति है,
वस्तु स्थिति, वस्तु स्थिति में है, हमारे परिणमन में नहीं है।
परिणमन नहीं है, पर्याय
परिणमन में नहीं है तो वो गलती है, गलती पर्याय में होती है, सही बात पर्याय में होती है। द्रव्य में तो गलती भी नहीं है, पर्याय भी नहीं
तो परिपूर्ण है,
द्रव्य परिपूर्ण है, लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं है तो हमारी विपरीतता है। हम पूर्ण है, पूर्ण है, पूर्ण है, चिल्लाए गाए बजाए कुछ भी करे लेकिन अनुभव नहीं करे तो कल्पना में रह जाएंगे।
कल्पना नहीं होती, कल्पना दोष है,
कल्पना दोष है, कल्पना विप्रयास है। देखिए जो पूर्ण स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, वो तो वचनातीत है, विकल्पातीत है, मनातीत है। उसको हम हमारे मन की सीमा में कैद करेंगे तो ये कल्पना वाली बात हो जाएगी। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान का जो विषय है उसको मन की कल्पना में कैद करना नहीं है कभी भी। ये शुरुआत से हमें समझना है, आत्मा शुद्ध है, ध्रुव है, पूर्ण है, अपरिणामी है, परम परिणामी भाव स्वरूप है, नित्य है, बहुत अभेद है। बहुत से इनकी जो विशेषताएं विशेषण रूप से बताई जाती हैं, ये हमारे मोक्ष लोक को एक आउटलाइन मिलती है। क्या मिलती है? आउटलाइन मिलती है, एक नक्शा जैसे जो बताया जाता है वैसी बात है वो। अब जो मूल काम करना है वो बाकी है, तो उसी से उसके साथ ही उसकी समझ होनी चाहिए कि हमारा काम पूरा पूरा बाकी है। हमने पूर्ण है, शुद्ध है ऐसा जाना, इसलिए कोई काम हो गया है, इसलिए वो से ऐसा रखते रहे तो काम हो जाएगा, ये सब भ्रम है। कार्य की पद्धति कोई अलग है, कार्य पद्धति वो नहीं है कि ऐसा समझ में आया, सुनने में आया, इसलिए हम उसका रटन करते रहे, तो वो भी हमारी मान्यता होगी, वही हमारा ज्ञान हो गया, ये बात बिल्कुल भ्रमित है, ये सब कल्पना है। उसी वक्त हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में होना चाहिए कि कल्पनातीत मनातीत वस्तु है, वही जब हमारे अनुभव में आएगा तब उसका ज्ञान सही है, तब उसकी मान्यता सही है। अब सही नहीं है, अब एक आउटलाइन मिली है, तो आउटलाइन में क्या है कि इस विषय में कहीं हम दूसरा बौद्धिक स्तर में विप्रयास नहीं करें,
मर्यादा
इसकी वो मर्यादा है। बौद्धिक स्तर से हम उसके स्वभाव से उसको अशुद्ध नहीं माने, स्वभाव से उसको अपूर्ण नहीं माने, नहीं समझे, स्वभाव से उसको पर्याय वाला परिणाम है वैसा नहीं माने, उतनी बात है। लेकिन जिस योजना से इसका अनुभव होता है उस योजना को फॉलो किए बिना, अनुभव आ जाने और अनुभव आए बिना, ये जो बात हमने ऊपर ऊपर से समझी है और पक्की कर रखी है, वो न पक्की है न समझी, बराबर है,
बराबर
ऐसा लेना है,
बराबर
वरना वैसे ही तय बिना अनुभव आयु चला जाएगा। शुरुआत हमारी ये बात सुनने में 50 साल पहले हुई होगी, आज 50 साल बाद क्या रिजल्ट है हमारा, गड़बड़ क्यों हुई? जो 6 महीने में काम होता है वो 50 साल में क्यों नहीं हुआ? तो वहां हमने जो पर्याने वाली नहीं थी, दूसरी गड़बड़ उठी है। हमने हमारा विपरीत परिणमन को, विपर्यास को, हमारी गलती को समझी नहीं, देखी नहीं और उसको ठीक किया नहीं, ये बात हुआ है
जी।
ऐसी बात है,
उसमें रोग नहीं मिटा तो रोग के तपास भी नहीं किया और दवाई भी चेंज नहीं की।
देखो एक खांसी होती है, हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं, चार आठ दिन मिलती नहीं है, डॉक्टर तो हम स्टैंड से सुने नहीं देंगे कि साहब ये आधी रात को खांसी परेशान कर रही है, आपको परेशान करना पड़ता है, आपकी दवाई आठ दिन लिया कुछ फर्क नहीं हुआ। अच्छा ठीक, चलो मैं दूसरी दवाई आपको बता देता हूँ, वो लेना है, दवाई चेंज करते हैं। दूसरी दवाई लिया फिर भी नहीं मिलता, तीसरी दवाई लिखाया फिर भी नहीं मिलता, हम डॉक्टर को चेंज करेंगे। अब दवाई तो नहीं चेंज करेंगे, हम खुद डॉक्टर को चेंज कर देंगे।
बराबर,
इधर हम एक ही बात करते रहते हैं, एक ही इलाज करते रहते हैं और हमारा रोग मिटता नहीं, हम न दवाई को चेंज करते हैं न डॉक्टर को चेंज करते हैं। कहाँ की बात है, प्रैक्टिकल साइड में तो ऐसा हम करते नहीं, देहार्थ में ऐसी गलती करते नहीं हम। देह के रोग को मिटाने के लिए हम दवाई चेंज कर लेते हैं, डॉक्टर को चेंज कर लेते हैं, पर दुनिया भर में तलाश कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा रोग हो तो जो मिटता नहीं है तो दुनिया भर में इसकी तलाश करेंगे। इधर हमारा रोग नहीं मिटता है तो हमने कभी ये सोचा कि हम कोई हमारी कार्य पद्धति में गलती तो नहीं, हमारी कार्य पद्धति तो हम सही मानते हैं, हम वो बदलना चाहते नहीं हैं। सभी धार्मिक क्षेत्र में आने वाले जीव को कोई तकलीफ बड़ी होती है तो इसी बारे में होती है कि जो पद्धति जो ग्रहण कर लेता है, चाहे इससे रोग मिलता है नहीं मिलता है देखता ही नहीं है, बस पकड़ करके बैठ जाता है, मानता है हम सही करते हैं। अगर सही करते हो तो उसका रिजल्ट आना चाहिए था, कि कारण दो और कार्य नहीं हो, बनता ही नहीं, कभी कारण ही नहीं मिला है, कार्य कहां से होगा। इसलिए ये रिसर्च का विषय है, खोज का विषय है, और सही खोज पूर्णता के लक्ष्य वालों को होती है। जिसको स्वभाव की खोज नहीं हुई उसको पूर्णता का लक्ष्य हुआ ही नहीं है। जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है उनको ये बात समझ में आती है कि ये पूर्णता पर्याय में आएगी, सहज आने वाली है। पर सहज कहां से आएगी, किस चीज का अवलंबन लेने से ये सहजता पैदा होगी, इसको चलिए चीज कौन है, इसकी एक अपूर्व जिज्ञासा जब पैदा होती है। इसलिए छठी गाथा के पूर्व प्रश्न उठाया है, छठी गाथा जो स्वरूप का प्रतिपादन की है,
अवलंबन की जो बात आगे अवलंबन में ध्रुव को
अवलंबन
ध्रुव का लेना चाहिए
कि
नहीं लेना चाहिए।
ध्रुव का अवलंबन ज्ञान में आने पर आता है, ज्ञान और अवलंबन एक साथ होता है। जैसे हम दूसरे पदार्थ को जानता है तो हमारा ज्ञान अवलंबन लेकर जानता है, वैसे हमारा ज्ञान अगर ध्रुव को जानता है तो ध्रुव का अवलंबन लेकर के जानता है, तो वो जानना सही है। बिना अवलंबन हम ध्रुव को ध्रुव कहते हैं, जानते हैं, वो हमारा भ्रम है।
तो यहाँ अवलंबन का मतलब अन्वय से हो गया।
अवलंबन का मतलब क्या है, गुरुदेव ने हमने वो कल एक बात कही थी, फिर से दोहराता हूँ, जो 100 शताब्दी अंक में जो प्रवचन दिया है जयश्री का लिखा हुआ 144 गाथा में, उसमें स्वरूप निश्चय की बात चली है। स्वरूप निश्चय जब आता है तब गुरुदेव ने यह फरमाया कि आंशिक राग का अभाव हो करके यह निश्चय होता है, विकल्प वाली स्वविकल्प दशा में होने पर भी विकल्प का अनादि का राग का अवलंबन है तो छूटता है आंशिक रूप से, और ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव का आंशिक अवलंबन आते ही स्वरूप निश्चय होता है। वैसे स्वरूप निश्चय नहीं होता है, पर वो निश्चय स्वामी होता कारण होता है, मंगा था वो चली है। तो उतनी सूक्ष्मता में क्यों गए गुरुदेव, फिर जान लिया मान लिया वो बात नहीं लिया, उड़ाया है विकल्प वाली बात को गुरुदेव ने मान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान लक्षण से ज्ञानोपयोग में जो ज्ञान स्वभाव प्रकट है उसका आनंद आता है। विकल्प जो आत्मा का विकल्प है, आत्मा पूर्ण है, शुद्ध है, ऐसा जो विचार विकल्प हमें आता है वो दो प्रकार से आता है। अनादि का एक प्रकार वो है कि उसमें जो विकल्पांश रागांश है उसमें हमने अहमपना अवलंबन ले रखा है, तो जो जो विकल्प होता है वो विकल्प रूप में हो ऐसा होता है। विकल्प रूप में हो ऐसा होता है तो वहां पूर्ण का ध्रुव का जो विकल्प है वही आत्मा हो गया। पूर्ण वस्तु ध्रुव वस्तु आत्मा नहीं रहा है वहां, ये बात समझने की है हमको। तो ये कैसे हो गए, ये चर्चा गुरुदेव ने वहां की है। और दूसरी जो विचार वाली दशा है उसमें ज्ञान और राग दोनों होने पर भी राग का अवलंबन को छोड़ करके और ज्ञान का अवलंबन लेकर के मैं ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा निश्चय होता है, उसको श्री निश्चय गुरुदेव ने बताया। वो प्रक्रिया जो निश्चय के विषय में है उसके पहले उसकी खोज चली है। जब हमारे गुरु हमको ये कहते हैं कि देखो देखो भाई तुम्हारा उपयोग लक्षणम, ऐसा तुम्हारा आत्मा है, लक्षण मैंने स्वरूप, तू उपयोग स्वभावी उपयोग स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी हो, तो उपयोग हमारे समझ में आता है लेकिन स्वभाव हमको क्यों वहां से ग्रहण नहीं होता है
जी,
जबकि वहां स्वभाव प्रकट है, वहां स्वभाव प्रकट है। 415 गाथा के बाद एक कलश है, वो कलश 246 नंबर का कलश है, उसके भावार्थ में जयचंद्र जी ने बहुत सुंदर बात की है। आखिर की गाथा थी और आचार्य महाराज को ये गाथा पर आखिर का कलश मेरे सामने 246 आखिरी कलश है। समय सार का पूर्ण करने का यहाँ पहला शब्द है इति। जब कोई बात पूर्ण की जाती है तो इति शब्द लिखा जाता है संस्कृत में, इति मैंने बात पूर्ण कर दिया हमने, तो इति कहकर के क्या कहा कि इदं आत्मनः तत्त्वं ज्ञान मात्रं अवस्थितम्। ये जो आत्मा का तत्व है वो ज्ञान मात्र है ऐसा हमने कहा। सारे समय सार का हमने आत्मा को मात्र ज्ञान ऐसा कहा। कैसा है वो, अखंडम एकम अचलम स्वसंवेदम अबाधितम, वो अखंड है, एक है, अचल है और स्वसंवेदन में आने वाला अबाधित स्वरूप है। ये तो शब्दार्थ हुआ। इसका भावार्थ लिखते हुए बहुत सुंदर बात करते हैं कि यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। इसका कारण यह है, समय सार में क्यों कहा आत्मा का स्वरूप ज्ञान कहा कि आत्मा में अनंत धर्म है किंतु उनमें कितने हो तो साधारण है, इसलिए वे अति व्याप्ति युक्त है, ये पूर्ण है, ध्रुव है, अपरिणामी है, ये सब साधारण धर्म है। क्योंकि पुद्गल भी पूर्ण है, पुद्गल भी ध्रुव है, पुद्गल भी अपरिणामी है, पुद्गल भी परम परिणामी भाव स्वरूप है, तो ये तो सब सामान्य है, इससे तो कभी आत्मा पहचाना जाता नहीं है, उनसे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। और कुछ धर्म पर्यायाश्रित है, किसी अवस्था में होते हैं किसी अवस्था में नहीं होते हैं, मैंने विभावी विभाव धर्म है तो वना भी अनंत नहीं होते, अनित्यता भी धर्म है वो सभी तीनों काल नहीं होते। जैसे राग है, राग को आत्मा करता है लेकिन सर्व काल में वो नहीं होता। चलने दो भाई। किसी अवस्था में होते हैं और किसी अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए वे अव्याप्ति युक्त है, उससे भी आत्मा नहीं पहचाना जाता। अब रियात्रकाली बात, चेतनता यदि भी आत्मा का लक्षण है जिसमें अति व्याप्ति और व्याप्ति नहीं है, ऐसा आत्मा का लक्षण है, तथापि वह शक्ति मात्र है, वो त्रिकाली है, व्यक्ति रूप नहीं है, इसलिए शक्ति रूप धर्म से कोई आत्मा पहचाना नहीं जाता, चाहे वो चैतन्य हो, ज्ञान हो, आनंद हो, कोई भी अदृष्ट है, अज्ञानी को दिखाई नहीं देता, शक्ति रूप होने से दिखाई नहीं देता, लेकिन उस चेतन के व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है, ये इसकी पर्याय है, दोनों उपयोग है। उस दर्शन और ज्ञान में दर्शन निराकार है, पकड़ में नहीं आता, सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता। इस दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, समझ में आए, ऐसा है, प्रगट है, और ज्ञान साकार है, प्रगट है, पर अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। तो अनुभव गोचर ज्ञान है वो स्वसंवेदनात्मक है, वेदन का अनुभव है। कभी हमने ज्ञान को वेदन के रूप में देखा क्या, खोल दिया क्या? तो प्रगट है वेदन और साकार है, मैंने पकड़ में आया, ऐसा है, इसका स्वरूप पकड़ सके, ऐसा है, इसलिए वो साकार है। गुरुदेव ने ये बात कही कि देखिए यहां स्वभाव अंश प्रगट है, जो स्वसंवेदन है, ज्ञान वेदन है, उसमें स्वभाव अंश प्रगट है। तो स्वभाव अंश मैंने एक टुकड़ा नहीं है, वो अखंड चीज है। तो जैसा वो पर्याय में दिखाई देता है वैसा ही द्रव गुण में व्यापक रूप है, द्रव गुण पर्याय तीनों में अखंड रूप से उसकी व्याप्ति है, लेकिन पकड़ने का चांस, पकड़ने का अवकाश, मौका एक ज्ञान के उपयोग नहीं है, और जगह नहीं है, यहां से वो पूरा पूरा पकड़ने में आ जाता है, क्योंकि स्वभाव अखंड है, इसलिए यहां से ये पूरा स्वभाव ग्रहण होता है, उसका निश्चय होता है, उसकी पहचान होती है, और वो पहचान अनुभव का कारण है, दूसरा कोई अनुभव का कारण नहीं है, पहचान ही अनुभव का कारण है, वही निश्चय है, वही भाववासन है, वही यहां से स्वरूप सन्मुखता आई। क्यों? कि जो ज्ञान वेदन है वो वेद्य वेदक रूप है, वेदन खुद ही करता है और वेदन में खुद ही आता है। देखिए प्रसन्नता कहा रही ना, 12 अंग का रहस्य, पारमार्थिक रहस्य अंतर्मुखता है। हमारे जीव ने अनंत काल में जितने भी धर्म साधन किए हैं बहिर्मुख परिणाम से किए हैं, कभी अंतर्मुख नहीं हुआ, और अंतर्मुख होना यही एक रहस्य है। अगर वो रहस्य पकड़ने में आता है, जीव अंतर्मुख होकर के उसका निवेड़ा हो जाता है, तो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, उसमें हमारा बहिर्मुख पना है कि अंतर्मुख पना है, चलो मान लिया आत्मा ध्रुव है, पूर्ण है, शुद्ध है, कहां माना? बहिर्मुखता में। कहां जाना? बहिर्मुखता में। कैंसल करो उसको, ये काम की चीज नहीं, उससे हमें कुछ लाभ है ऐसा मत माना। क्यों? ये बहिर्मुखता में हुआ है। वस्तु का स्वरूप जैसा पूर्ण शुद्ध है, ध्रुव है, वैसा ही परिपूर्ण अंतर्मुख स्वभावी है, ये अंतर तत्व स्वरूप है। नियम सार में वो शब्द लिया है, परम पारिणामी भाव अंतर तत्व स्वरूप है, इसलिए उपयोग जब अंतर्मुख होता है तब पुरुषार्थ के साथ, उपयोग जब अंतर्मुख होता है तब ये उसका पता चलता है कि मैं सही रूप में ऐसा हूं, उसी को कहते हैं पहचान। ये पहचान वाली बात इधर जयचंद जी ने कही है, अमृत चंद्र आचार्य ने निश्चय करने की बात 144 गाथा में कही, विशेष रूप से इसका कोई स्पष्टीकरण कहीं भी सारे समय साल में नहीं आया, तो परिशिष्ट में लक्षण लक्षण की चर्चा की विस्तार से। और ना ये कहा कि प्रसिद्ध ही ज्ञानम, ज्ञान प्रसिद्ध है या प्रगत है, ऐसा लिखा है कि तुम्हारा ज्ञान प्रसिद्ध है, प्रगत है, व्यक्ति रूप है। ज्ञान मात्रस्य, मात्र ज्ञान लेना है, अकेला ज्ञान लेना है, शुद्ध ज्ञान लेना है, उसका स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, स्वसंवेदन से उसकी प्राप्ति है, विचार से उसकी प्राप्ति नहीं, विकल्प से उसकी प्राप्ति नहीं, स्वसंवेदन से उसकी प्राप्ति है। और इधर भी लिखा है स्वसंवेदन मबाधितम, वो बात उन्होंने लक्षण लक्षण की चर्चा में किया है। तो ये इतनी बात जो आई है वो महत्वपूर्ण है। ज्ञान उपयोग है, उसके दो अंग है। ये सब बातें आत्मजागृति में तो बहुत प्रसिद्ध रूप से उन्होंने लिख करके दी है, बहुत लिखा है इस विषय में, बहुत लिखा है, अपने लिखावट चालू है समझो। उसके दो अंग है, एक ज्ञान विशेष और एक ज्ञान सामान्य। जो ज्ञान विशेष है वो ज्ञाकार ज्ञान है, और जो ज्ञान सामान्य है वो ज्ञानाकार ज्ञान है। और वो 15 गाथा की का विषय है, ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष। अब ज्ञान सामान्य की बात आती है तो त्रिकाली में ले जाते हैं अपन मुख से। गुरुदेव ने प्रवचन करके स्पष्ट किया है कि यहाँ त्रिकाली की बात नहीं है, यहाँ पर्याय का विषय चल रहा है। कि ये ज्ञान सामान्य मैंने पर्याय उपयोग का एक अंग है, वो बात चल रही है। पर वो प्रवचन रचना पर गुजराती भाग एक का 263 नंबर का एक बड़ा पैराग्राफ में वो स्पष्टीकरण है। क्या करें, समझाने का प्रसंग आता है तो सब ध्यान में रखना पड़ता है कि किस ग्रंथ में किस पेज पे क्या लिखा है। बात तो दिमाग में से नहीं जानी चाहिए, बहुत स्पष्ट किया है गुरुदेव ने, कुछ असमंजस बात नहीं रखे, कोई संदिग्ध विषय नहीं रखा, बहुत खोल खोल करके एकदम स्पष्ट कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सामान्य है वो स्वरूपाकार है, ये जो स्वसंवेदन है वही अनुभूति है, और उसमें स्वपना होते ही वो आत्मा है, वही आत्मा है। अब तुमको त्रिकाली का विषय नहीं आएगा, वो बात रहती नहीं, ऑटोमेटिक आएगा। ज्ञान वेदन में स्वपना आया कि आश्रय हो गया त्रिकाली का स्वभाव का, ऑटोमेटिक बिना विकल्प। जैसे मीठी चीज खाई, आश्रय हो गया शक्कर का, मीठापन तो उसकी एक गुण की एक पर्याय है, शक्कर का मीठापन तो एक गुण की एक पर्याय है, चखते ही शक्कर को चखी, आश्रय हो गया शक्कर का। ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान के पर्याय का एक अंग है, दूसरा अंग तो बाकी है जो ज्ञाकार ज्ञान है। लक्ष्य में उसको छोड़ करके, उसको गौण करके, उसका विच्छेद करके, उद्देश्य से अगर हम सामान्य को ग्रहण करते हैं तो वेदन गोचर होता है वो, और वो वेदन होते ही आत्मा का वेदन होता है, ऐसा ग्रहण हो जाता है, आश्रय हो जाता है। यही टेक्निक है अंतर्मुख होने की, यही कला है अंतर्मुख होने की। इतनी गहराई में गए बिना हम ध्रुव है, पूर्ण है, बहिर्मुख भाव में रटते रहेंगे, क्या फायदा इससे?
ये बात जरा समझ नहीं आई आपने, जो समान विशेषता
उसको समझने के लिए हरीश भाई बहुत सा अभ्यास चाहिएगा। आपका पदार्पण बहुत कम काल से है और अभ्यास को कुछ कम है, काफी सत्संग चाहिए, काफी अभ्यास चाहिए। ज्ञान सामान्य क्या चीज है? कॉमन फैक्टर है ज्ञान का, सामान्य मैंने कॉमन। देखो आपका ज्ञान में कितने स्वाद चाखे, अब तक हजारों स्वाद को चाख लिया। आपके आंख ने कितने कलर को देखे, हजारों कलर को आपने देख लिया। कितनी आवाज सुने, कि हजारों आवाज सुने। अनेक विध ने एक ने हजारों के तादाद में ज्ञान में आ गए। आपके ज्ञान में उनमें से कौन सी चीज है बताइए? कोई स्वाद है अभी नहीं, कौन सा आवाज छोड़ गया है तो कोई नहीं, हाँ कौन सा कलर अंदर रह गया तो कोई नहीं, रहा कुछ? क्या रहा? शुद्ध ज्ञान रहा। क्या रहा? ज्ञान अपनी शुद्धि का त्याग कभी करता नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव है। जैसे आत्मा शुद्ध स्वभाव ही है, उसकी शुद्धता का अभाव होता नहीं तीन काल में, निगोद में अनंत काल रहा तो भी, वैसे निगोद में प्रचुर कषाय कलंक के बीच में रहा हुआ ज्ञान कषाय का अभाव स्वरूप ही रहा है, वैसा है क्या? नहीं, निगोद की कषाय का एक अंश वर्तमान में है ज्ञान में है, अरे स्मरण करो तो भी नहीं मिलेगा ठीक, क्योंकि स्मरण भी चला गया उसका, तो चीज ही नहीं है ज्ञान में। संयोग रूप था वो, वो कषाय का वेदन है, वो संयोग रूप था, बहुत दुख था उसमें, बेहद दुख था, लेकिन ज्ञान में दुख नहीं हो सकता। उसी वक्त में ज्ञान ज्ञान ही था, वही ज्ञान अभी ज्ञान ही है। ये ज्ञान सामान्य हमेशा शुद्ध ही रहता है, ये इसकी शुद्धता की अनंत ताकत है। इस ताकत से स्वभाव को समझो, ज्ञान सामान्य हमेशा शुद्ध रहता है, ये इसकी ताकत से रहता है, इसको कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। निगोद की पर्याय अशुद्ध नहीं कर सकती, निगोद का प्रचुर कषाय भी उसको कषाय रूप नहीं कर सकता। सामान्य पर्याय रूप है ऐसा समझाने के लिए आउटलाइन है। सामान्य सामान्य होता है, न द्रव्य रूप होता है, न गुण रूप होता है, न पर्याय रूप होता है, तीनों भेद है। ये अभेद है, निर्भेद है, अभेद भी नहीं है, निर्भेद है, जिसमें भेद नहीं है ऐसा है। पर तीनों में है, द्रव्य में भी है, गुण में भी है और पर्याय में है, फिर भी तीनों में से एक रूप भी नहीं है। अन्य मतियों को जैन दर्शन का वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आने का ये कारण है कि उल्टी सुल्टी बात शब्दों में आती है, द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में है, फिर भी द्रव्य रूप नहीं, गुण रूप नहीं, पर्याय है। तो क्या समझे? समझने वाले को दिमाग खराब हो जाएगा कि तोबा है इस बात का, कि मुक्ति सूति बात कैसे करते हैं, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा में भी है, ऐसा भी है, बात क्या है? जैसे उपयोग में स्वभाव प्रकट है तो उपयोग तो पर्याय है, लेकिन स्वभाव पर्याय नहीं है। ध्रुव द्रव है लेकिन स्वभाव द्रव नहीं है, द्रव का भेद रूप नहीं है, स्वभाव स्वभाव है। स्वभाव तो स्वभाव की दृष्टि से देखा जाता है, कोई गुण भेद द्रव भेद पर्याय भेद की दृष्टि से वो देखने में नहीं आता। इस तरह से ये पहचान है, ये समझने की बात नहीं है, पहचान पहचान का प्रयोग प्रैक्टिकल की बात है। जब तक कोई मुमुक्षु इस हद तक प्रैक्टिकल साइड से नहीं पहुंचता, जहाँ तक कोई बात उसकी सीधी है, यथार्थ है, वो मानने लायक नहीं। इसलिए ज्ञानियों ने ये परिभ्रमण की वेदना से लेकर, पूर्णता का लक्ष्य से लेकर, अवलोकन का प्रयोग से लेकर, भेद ज्ञान का प्रयोग से लेकर, स्वरूप की पहचान तक का जो बात लिया है, उसमें सभी जगह यथार्थता को ले रखी है। मुमुक्ष की भूमिका का यथार्थपना एक कारण है और सम्यक्त्व इसका कार्य है। आखिर में अपना जो सम्यक्त्व का आर्टिकल आया है उसमें वो बात ली है कि सम्यक्त्व क्या चीज है। वो उतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि भाषा को चढ़ नहीं है। पंचाध्यायी में ही बात किया, सम्यक्तम अति सूक्ष्म भाषाम अगोचरम तथा वक्तुम च श्रोतुम च न अधिकारी विधिक्रमा। ये 400 नंबर की गाथा है उत्तरार्ध के पंचाध्यायी। इतना सूक्ष्म है, कहां से समझे हम, लेकिन वो भाषा गोचर नहीं है। वो बात जरूर है लेकिन ज्ञान गोचर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमको भाषा से मतलब नहीं है, हमको ज्ञान से मतलब है
जी।
तो ज्ञान में कैसे लेना, यथार्थता से लेते हैं। लेकिन आपको भक्ति का भाव हुआ यथार्थ है कि नहीं है, देखो। आपको शास्त्र स्वाध्याय का भाव हुआ यथार्थ है कि नहीं है, वो देखो। आपको वैराग्य हुआ यथार्थ है कि नहीं है, वो देखो। जितने भी आपके धर्म साधन हैं उसमें अपने जो परिणाम लगते हैं मुमुक्षु की भूमिका के, उस भूमिका में वो यथार्थ का धारण करता है कि नहीं करता है, वो देखो। इस यथार्थता पर एक आरती कराने वाला है हमारा, कुछ तैयारी अच्छी है, कोई लिखने का समय नहीं मिलता है, इधर जाते उधर जाते तो। लेकिन ये यथार्थता यही मुमुक्षु का सम्यक्त्व है, मुमुक्षु की भूमिका का वही सम्यक्त्व है, इसी का एनलार्जमेंट ज्ञान दशा का सम्यक्त्व है और कुछ नहीं है। इसलिए हम चाहे जो कार्य करें मुमुक्षु की भूमिका के लायक, कोई भी धर्म साधन करें, इसमें यथार्थता है कि नहीं है वो हमें चारों पटों से देखना है। पर वही हमारा सत्संग का स्वाध्याय का विषय होना चाहिए कि हम यथार्थता में है या अयथार्थता में चल रहे हैं। अयथार्थता में अनंत काल चलेंगे, एक जिंदगी क्या, 50-60 साल क्या, 100-150 साल तो कुछ नहीं है, अनंत काल चलेंगे अयथार्थता में, सम्यक्त्व पैदा नहीं होगा। और यथार्थता यथार्थता वाले को 6 महीना काफी है, यथार्थता वाले को 6 महीना काफी है। और कहिए अगर सिद्ध पद का रिजर्वेशन 6 महीना के प्रयास में मिलता है तो कितना सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। चाहिए हमारी दरकार को कि हम करते हैं, दरकार से करते हैं, बिना दरकार करते हैं, हमारी यथार्थता को हम समझने का कोशिश करते हैं, प्रयास चलता है या नहीं चलता है, या वैसे ही अंधश्रद्धा से तो सभी धर्म मत वाले चलते हैं, हम ऐसे अंधे कैसे चले। बिल्कुल एकदम दरकार से काम करना है, कहीं भी हमको थोड़ी सी भी चुप नहीं करनी है। क्यों कि कभी चुप तो थोड़ी लगती है लेकिन पूरी निष्फलता को प्राप्त होता है।
सारी जिम्मेदारी
है,
सारी जिम्मेदारी उठी जा रही
अपने 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 पर ही है, सारी जिम्मेदारी रुचि आत्म कल्याण की होनी चाहिए, दूसरी रुचि नहीं होनी चाहिए। संसार की रुचि और आत्मा की रुचि दोनों प्रतिपक्ष में है, विरुद्ध है, तो रुचि तो अपनी होनी चाहिए। आत्म कल्याण वही भावना के साथ होती है, वही भावना सफल होती है, दूसरी भावना सफल नहीं होते। मूल में वो बात है, भावना है, रुचि है, वो मुमुक्षु की भूमिका का मूल है सब, ये तो पक्का होना चाहिए, फिर ही बात आगे बढ़ने वाली है, तभी तो ज्ञान सीधा चलेगा, समझ सीधी चलेगी, वरना ज्ञान में टेढ़ापन रहेगा, उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा।
तो रुचि का परिवर्तन किस प्रकार से उसका
जरूरत लगे तो सोगानी जी ने ये बात कही और बैंसरे ने भी वही बात कही, रुचि जरूरत में से पैदा होती है, हमको हमारे आत्मा को एक प्रश्न पूछना चाहिए कि तुमको तुम्हारे आत्म कल्याण की, आत्मशांति की, आत्मानंद की जरूरत लगी या नहीं लगी, ये समझने की बात नहीं है, लगने की बात है।
जरूरत
तो सुख दुख के विचार में से, विवेक में से उत्पन्न होती है। देखिए हमारा सारा जीवन अभी तक आनंद का किस लिए गया, सुख जुटाने के लिए और दुख मिटाने के लिए, जबकि उस विषय में हमारी भ्रांति थी, इसलिए सफलता नहीं मिली है अब तक, और संसार में किसी प्राणी को नहीं मिली है, संसार के अनंत जीव अनंत काल तक सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, लेकिन किसी को सुख मिलता नहीं। करोड़पति अरबपति राजा महाराजा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होने के बाद बावजूद भी किसी को सुख मिलता नहीं, पूरी सत्ता मिलती है, पूरे पैसे मिलते हैं, पूरे परिवार मिलते हैं, सब कुछ पूरे मिलते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं है। यही कारण है कि सुख के विषय में जो विज्ञान है वो नहीं समझे, सुख का जो साइंस है, विज्ञान है, वो तो जैन दर्शन और उसमें भी दिगंबर साहित्य के अलावा कहीं है ही। ये बात आप चैलेंज रख करके बोल सकते हैं, बताइए कहीं देव, ये बात जरूर है। अब जो है जिसके घर में है उसको दरकार नहीं है, वो साइंस पढ़ने की, समझने की, उसका प्रैक्टिक साइंस है ना, वो अकेले समझने की चीज नहीं होती। आप अकाउंट पढ़ सकते हो, आप सब कुछ पढ़ सकते हो, साइंस में पढ़ाई और प्रैक्टिकल दोनों करना पड़ता है, अकेली पढ़ाई की चीज विज्ञान नहीं है। विज्ञान के विद्यार्थी चाहे स्कूल का हो कॉलेज का हो, उसको प्रैक्टिकल में जाना पड़ता है, तभी वो साइंस को समझ सकता है, क्योंकि वो अकाउंट नहीं है, गणित नहीं है, वो गणित की बात अलग है, साइंस की बात अलग है। एक बहुत विचित्र परिस्थिति है विज्ञान की, आपको मैं बताऊं, ये जो चूना होता है ना दीवार पर लगता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और ये मार्बल है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक ही है, साइंस की भाषा में यानी केमिस्ट्री की भाषा में उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3, Ca मैंने कैल्शियम, CO3 मैंने कार्बोनेट, O2 हो तो उसको डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चूना का पत्थर भी है और ये मार्बल का पत्थर है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कॉमन है, एक ही है, मैंने वो तत्व है, कैल्शियम भी तत्व है केमिस्ट्री में और कार्बन भी तत्व है, दोनों की केमिकल और तात्विक परिस्थिति एक ही होने के बावजूद भी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग ही है। चूना चिकना होता है, ये रूखा होता है, चूना का पाउडर करो चौटेगा, इसका पाउडर करो कहीं चौटेगा नहीं, रेत जैसा होता, बालू जैसा होता, ये साइंस है। तत्व एक होने से कोई इसके सभी धर्म एक हो जाते हैं, वो तो भौतिक साइंस में नहीं है, तो ये सब बात प्रैक्टिकल समझ में आती नहीं। थियोरिटिकल तो ऐसे बोलते कि दोनों को कैल्शियम कार्बोनेट है, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट होने के बावजूद भी बिल्कुल अलग चीज है, एकदम अलग चीज है, तत्व दोनों का एक है, चीज दोनों बिल्कुल अलग है, और दोनों स्पर्श करने में ठंडा है, इस पर पानी लगाओ ठंडा हो जाएगा और ठंडा होगा, चूने पर पानी लगाओ वो गर्म हो जाएगा, ये साइंस है। चूने पर पानी डालो तो ठंडा था, पानी भी ठंडा था लेकिन हो गया गर्म, हाथ लगा हुआ जल जाएगा साथ। विज्ञान ऐसी चीज है समझने में बहुत कठिन पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। वैसे हमारा सुख दुख, हमारा ज्ञान, ये सब आत्मा की प्रॉपर्टी है और बहुत कीमती प्रॉपर्टी है। जैसे मकान जमीन आदि प्रॉपर्टी होती है, सोना गहना पैसे, वैसे हमारे ज्ञान आनंद सुख शांति प्रभुत्व विभुत्व बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हमारे में है। इसका साइंस है और ये किताब धर्म का नहीं है, साइंस का है। अब देखिए साइंस के दृष्टिकोण से एक एक गाथा में साइंस भरा है। हमारी तो विजन ही साइंटिफिक है शुरू से, क्योंकि हम तो कुल धर्म से जेल में पैदा ही नहीं हुए, इसलिए मानने का सवाल नहीं था। लेकिन साइंस पढ़ते थे, हमारा इंटरेस्ट था इस विषय का, तो हमने इस ग्रंथों को विज्ञान के रूप में देखा है, धर्म के रूप में पहले देखा ही नहीं था। विज्ञान के रूप में देखा तो उसने वो देखा कि अरे सुख दुख का विज्ञान इधर पड़ा है और इसके समस्या का समाधान इधर रखा है। अपने को पढ़ करके नहीं, प्रयोग करके उसको हासिल करना पड़ेगा, इस ज्ञान को, इस प्रॉपर्टी को। जब प्रयोग करेंगे तभी मिलेगा, पढ़ने से नहीं मिल सकता, वो अपर्याप्त बहुत ऐसी बात। पूरी गाथा कर लेंगे पूरी की पूरी आगे यहाँ तक रखें।